नमस्ते, मैं आराव हूँ। 9R3 के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, द आर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, पॉल होरोविट्स और विनफील्ड हिल की इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन पर व्यावहारिक संदर्भ पुस्तक है। इसका तीसरा संस्करण 2015 में प्रकाशित एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को केवल सूत्रों के विषय की तरह नहीं बल्कि वास्तविक उपकरण बनाने की कला की तरह प्रस्तुत करता है। पुस्तक वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध जैसी बुनियाद से शुरू होकर ट्रांजिस्टर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, पावर सप्लाई, फिल्टर, ऑसिलेटर, डिजिटल लॉजिक, माइक्रोप्रोसेसर और हाई स्पीड इंटरफेस तक जाती है। इसका केंद्रीय उद्देश्य पाठक में ऐसा डिजाइन बोर्ड विकसित करना है जिससे वह घटक चुन सके, सीमाओं को पहचान सके और सर्किट के वास्तविक व्यवहार का अनुमान लगा सके। लेखक आदर्शीकृत मॉडल के साथ उनकी व्यावहारिक कमियों, मापन आधारित आंकड़ों और प्रचलित डिजाइन गलतियों पर भी ध्यान देते हैं, इसलिए यह पारंपरिक पाठ्यपुस्तक और कार्यस्थल पर उपयोग होने वाली तकनीकी संदर्भ पुस्तक के बीच की कड़ी है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, सर्किट डिजाइन में सिद्धांत के साथ अनुभवजन्य निर्णय। पुस्तक का सबसे विशिष्ट विचार यह है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का अच्छा ज्ञान केवल बुनियादी नियम याद कर लेने से नहीं बनता। ओम का नियम, किर्चहॉफ के नियम और सेमीकंडक्टर के मॉडल आवश्यक है, लेकिन वास्तविक सर्किट में तापमान, टॉलरेंस, शोर, लोडिंग, परजीवी कैपेसिटेंस और घटकों के बीच अंतर परिणाम बदल देते हैं। होरोविट्स और हिल इस अंतर को डिजाइनर की व्यावहारिक समस्या मानते हैं। वे नियमों के साथ उपयोगी अनुमान, सावधानियां और बार बार सामने आने वाली विफलताओं को रखते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि पुस्तक सिद्धांत को अस्वीकार करती है, बल्कि यह बताती है कि सिद्धांत को किस सीमा तक भरोसे से लागू किया जा सकता है और कब मापन या प्रोटोटाइप जरूरी हो जाता है। उदाहरण के लिए, किसी एम्पलीफायर का गेन निकालना पर्याप्त नहीं है, उसकी स्थिरता, बैंडविड्थ, इनपुट और आउटपुट सीमाएं भी देखनी होती है। इस दृष्टि से पाठक को किसी डेटाशीट के आदर्श आंकड़े को अंतिम सत्य मानने के बजाय पूरे उपयोग परिस्थिति का विश्लेषण करना सीखना पड़ता है। यही व्यावहारिक निर्णय क्षमता पुस्तक को केवल परिचयात्मक इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रंथों से अलग करती है। दूसरा, एनालॉग सर्किटों में ट्रांजिस्टर और ऑपरेशनल एम्पलीफायर का वास्तविक उपयोग। पुस्तक एनालॉग डिजाइन को अलग अलग ऊर्जों की सूची नहीं, संकेतों को नियंत्रित करने की व्यवस्थित प्रक्रिया की तरह समझाती है। ट्रांजिस्टरों के माध्यम से स्विचिंग, प्रवर्धन, करंट नियंत्रण और बायसिंग की भूमिका सामने आती है। बायस का उद्देश्य केवल ट्रांजिस्टर को चालू करना नहीं बल्कि उसे अपेक्षित संचालन क्षेत्र में स्थिर रखना है। इसके बाद ऑपरेशनल एम्पलीफायर को बहुउपयोगी निर्माण खंड के रूप में रखा गया है, जिससे इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, समिंग सर्किट, इंटीग्रेटर, फिल्टर और सेंसर इंटरफेस बनाए जा सकते हैं। पर पुस्तक आदर्श ऑप एम्प की धारणा पर रुकती नहीं। सीमित गेन, ऑफसेट, इनपुट बायस करंट, स्लू रेट, आउटपुट करंट और फीडबैक के कारण होने वाली अस्थिरता जैसे कारक डिजाइन को प्रभावित करते हैं। नकारात्मक फीडबैक प्रदर्शन को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन गलत लेआउट या अनुपयुक्त घटक के साथ वही दोलन पैदा कर सकता है। इस कारण पाठक सर्किट का गणितीय उत्तर पाने से आगे बढ़कर यह जांचना सीखता है कि वह चुना गया आईसी तय सप्लाई और अपेक्षित सिग्नल स्तर पर वास्तव में काम करेगा या नहीं। तीसरा, मापन, ऑसिलोस्कोप और डेटाशीट से परे घटक चयन। तीसरे संस्करण की महत्वपूर्ण विशेषता मापे गए व्यवहार को प्रमुखता देना है। इसमें कार्यरत सर्किटों के ऑसिलोस्कोप चित्र, उपयोगी ग्राफ और सक्रिय घटकों की तुलनात्मक सारणियां शामिल है। इनका उद्देश्य सजावटी चित्र देना नहीं बल्कि यह दिखाना है कि डिजाइन का परिणाम समय के साथ अलग आवृत्तियों पर और वास्तविक लोड में कैसा दिखता है। ऑसिलोस्कोप पर रिंगिंग, शोर, ओवरशूट या दोलन दिखाई देना अक्सर उस समस्या का प्रमाण है जो केवल डीसी गणना में नहीं दिखती। इसी तरह डेटाशीट किसी घटक की सीमाएं और सामान्य विशेषताएं बताती है, पर अलग निर्माताओं के परीक्षण मानदंड, विशिष्ट और अधिकतम आंकड़ों का भेद तथा प्रयोग की वास्तविक परिस्थितियां समझना आवश्यक है। पुस्तक की घटक सारणियां इस चयन को अधिक सूचित बनाती है, विशेषकर जब गति, कम शोर, कम लीकेज, पावर हैंडलिंग या इनपुट विशेषताएं निर्णायक हों। पाठक के लिए मुख्य सबक यह है कि मापन को अंतिम चरण की जांच नहीं समझना चाहिए। मापन डिजाइन का सक्रिय उपकरण है जिससे अनुमान सत्यापित होते हैं, त्रुटि का स्रोत खोजा जाता है और अगले संस्करण का सर्किट बेहतर बनाया जाता है। चौथा, डिजिटल लॉजिक से माइक्रोप्रोसेसर इंटरफेस तक विश्वसनीयता की समझ। द आर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को एनालॉग जगत से अलग और पूर्णतः त्रुटिरहित क्षेत्र मानने की भूल नहीं करती। डिजिटल लॉजिक में शून्य और एक जैसे विविध स्तर उपयोगी है क्योंकि वे शोर के प्रति सहनशीलता देते हैं। फिर भी वास्तविक डिजिटल संकेतों में थ्रेशहोल्ड, फैन आउट, प्रोपेगेशन डिले, क्लॉकिंग और सप्लाई शोर निर्णायक हो सकते हैं। पुस्तक लॉजिक परिवारों और डिजिटल बस इंटरफेस के व्यावहारिक उपयोग पर ध्यान देती है, ताकि पाठक समझ सके कि एक चिप का आउटपुट दूसरे की इनपुट आवश्यकताओं से संगत है या नहीं। माइक्रोप्रोसेसर आधारित प्रणालियों में यह समस्या और व्यापक होती है, क्योंकि सेंसर, मेमोरी, डिस्प्ले और अन्य बाहरी उपकरण अलग वोल्टेज स्तरों, समय सीमाओं और संचार विधियों के साथ जुड़े होते हैं। गलत पुलअप, लंबी तार, असंगत वोल्टेज स्तर या अपर्याप्त डिकप्लिंग कभी कभी ऐसे दोष देते हैं जो अस्थायी और खोजने में कठिन होते हैं। इसलिए पुस्तक डिजिटल डिजाइन को केवल लॉजिक फलन लिखने तक सीमित नहीं करती, वह संकेत अखंडता, इंटरफेस अनुशासन और बिजली आपूर्ति की स्वच्छता को विश्वसनीय डिजिटल प्रणाली के आवश्यक हिस्से के रूप में रखती है। अंत में पावर, ग्राउंडिंग और हाई स्पीड प्रभावों को आरंभिक डिजाइन निर्णय बनाना। कई शुरुआती सर्किट योजनाओं में पावर सप्लाई और ग्राउंड को निष्क्रिय पृष्ठभूमि मान लिया जाता है। पुस्तक का व्यावहारिक दृष्टिकोण इस धारणा को चुनौती देता है। हर सर्किट को स्थिर वोल्टेज, अपेक्षित करंट क्षमता और शोर नियंत्रित संदर्भ चाहिए। पावर सप्लाई में रिपल, लोड परिवर्तन, गर्मी और सुरक्षा को समझे बिना उत्कृष्ट एम्पलीफायर या डिजिटल लॉजिक भी अविश्वसनीय हो सकता है। ग्राउंडिंग भी केवल सभी तारों को एक जगह जोड़ने का काम नहीं है। साझा रिटर्न पथों में करंट से उत्पन्न छोटे वोल्टेज अंतर संवेदनशील एनालॉग संकेतों में शोर जोड़ सकते हैं। तेज किनारों वाले डिजिटल संकेतों और उच्च आवृत्ति वाले सर्किटों में तार तथा ट्रेस स्वयं ट्रांसमिशन लाइन जैसा व्यवहार कर सकते हैं। तब परजीवी इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, प्रतिबिंब और क्रॉसटॉक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पुस्तक इन प्रभावों को इसलिए शामिल करती है कि पाठक ब्रेडबोर्ड पर चलने वाले विचार को उत्पादन योग्य या प्रयोगशाला योग्य उपकरण में बदल सके। व्यावहारिक निष्कर्ष यह है कि लेआउट, डिकप्लिंग कैपेसिटर, रिटर्न पथ और कनेक्टर का चुनाव सर्किट पूरा होने के बाद की सज्जा नहीं, बल्कि आरंभिक विद्युत डिजाइन का भाग है। निष्कर्ष में यह पुस्तक इलेक्ट्रॉनिक्स के उन विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं, प्रयोगशाला वैज्ञानिकों, कार्यरत इंजीनियरों और गंभीर शौकिया निर्माताओं के लिए सबसे उपयोगी है जिनके पास बुनियादी गणित और विद्युत अवधारणाओं की कुछ परिचितता है तथा जो वास्तविक सर्किटों को समझना और बनाना चाहते हैं। बिल्कुल नए पाठक भी इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन उन्हें गति, तेज और कुछ पूर्वज्ञान मानकर चलने वाली शैली के कारण किसी आरंभिक पाठ्यक्रम या प्रयोगशाला मार्गदर्शिका की सहायता उपयोगी लग सकती है। पुस्तक का व्यावहारिक लाभ यह है कि यह पाठक को केवल सही उत्तर निकालने के बजाय सही प्रश्न पूछना सिखाती है। क्या यह घटक इस वोल्टेज पर सुरक्षित है? क्या फीडबैक स्थिर रहेगा? क्या मापन व्यवस्था परिणाम को बदल रही है? और क्या लेआउट संकेत को खराब कर रहा है? समान श्रेणी की कई पुस्तकों में या तो सिद्धांत का औपचारिक विस्तार अधिक होता है या तैयार परियोजनाओं का संकलन। द आर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन दोनों के बीच डिजाइन विवेक पर केंद्रित है। इसके मापन आधारित ग्राफ, ऑसिलोस्कोप उदाहरण, घटक तुलनाएं और विफलताओं पर स्पष्ट चर्चा इसे दीर्घकालिक संदर्भ बनाती है। यह हर विषय का पूर्ण अकादमिक व्युत्पादन नहीं देती, ना ही अभ्यास प्रश्नों वाली पारंपरिक पाठ्य पुस्तक है। फिर भी एनालॉग और डिजिटल प्रणालियों के बीच संबंध दिखाने तथा वास्तविक सीमाओं को केंद्र में रखने की इसकी क्षमता इसे इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन साहित्य में अलग स्थान देती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं पॉल हॉरोविट्स, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।